देखिए भाई आगे सबक मतन देखिए पहले। औ बिदवामिहा मादामत दातु फदाइमतुन मुतलकतुन औ मादामल वस्फु फउर्फियतुन आम्मतुन औ बिफिअलियतिहा फमुतलकतुन आम्मतुन औ बिअदमि जरूरति खिलाफिहा फमुमकिनतुन आम्मतुन फहादिही बसाइतु। मुअज्जहात का बयान चल रहा है और आपने पढ़ा कि मुअज्जहात तो वैसे बहुत से हैं लेकिन मनातिका के नजदीक जो मुअतबर हैं वो 15 मुअज्जहात हैं भाई, और उसमें से 8 जो हैं वो बसीत हैं और 7 जो हैं वो मुरक्कब हैं। और मुअज्जह बसीता कौन से कजिए को कहते हैं? जिसमें सिर्फ ईजाब हो या सिर्फ नफी हो, यानी सल्ब हो, एक चीज हो, ईजाब और सल्ब में से एक चीज हो। जैदुन कायमुन, देखो इसमें सिर्फ ईजाब है। जैदुन लैसा भी कायमिन, इसमें सिर्फ सल्ब है। तो कजिया मुअज्जहा वो है जिसमें जिहद जिक्र होती है और सिर्फ ईजाब होता है या सिर्फ सल्ब होता है, जबकि मुरक्कबात वो आगे आएंगे उसमें एक ही कजिए के अंदर ईजाब भी होगा और सल्ब भी होगा, सल्ब भी। और कल के सबक में आपने 4 मुअज्जहात पढ़ लिए थे, एक जरूरिया मुतलका, एक मशरूता आम्मा, एक वक्तिया मुतलका और एक मुंतशिरा मुतलका, मुंतशिरा मुतलका। और इन सब में भी जरूरत की कैद थी, लेकिन यह जरूरत कभी जात के एतबार से होती है, कभी यह जरूरत वसफ के एतबार से होती है, और कभी यह जरूरत वक्त मुआयन के एतबार से होती है, और कभी यह जरूरत वक्त गैर मुआयन के एतबार से होती है। तो इनमें से सबसे पहला जो है जरूरिया मुतलका, उसमें यह बयान किया जाता है कि यह वली निस्बत जरूरी है जब तक जात मौजू मौजूद है, जैसे कुल्लु इंसानिन हैवानुन, और या सालिबा देख लें, लाशई अमिनल इंसानी बिहजरिन, कोई भी इंसान पत्थर नहीं है। तो इंसान के लिए हैवान के सबूत वाली निस्बत हो या इंसान से हजर के सल्ब वाली निस्बत हो, इन दोनों निस्बतों का ये नफ्सुल अमर और वाकई में इंसान के लिए जरूरी है भाई, यानी जब तक जाते इंसान है उसके लिए हैवान होना जरूरी और पत्थर न होना उसके लिए जरूरी है और जात के एतबार से है। तो लिहाजा इसको क्या कहेंगे? जरूरिया मुतलका। जरूरिया क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जरूरत की कैद है। और मुतलका क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें वस्फ उनवानी की या वक्त की कोई कैद नहीं है कि यह वाला वसफ है तो इसके लिए यह महमूल जरूरी है, नहीं, इसमें वसफ की कैद नहीं। जबकि मशरूता आम्मा, उसमें भी जरूरत का जिक्र होता है कि यह निस्बत जरूरी है, लेकिन जब तक वो वसफ उनवानी है, यानी मौजू के लिए वो वाला वसफ साबित है। जैसे मैं कहता हूं कुल कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिई बिस जरूरती मा दामा कातिबन, हर कातिब के लिए मुतहर्रिकुल असाबे होना जरूरी है, मा दामा कातिबन, जब तक वो कातिब है। तो देखो इसमें भी जरूरत जिक्र है, लेकिन इसमें जरूरत है किस एतबार से? वसफ के एतबार से। जब तक इंसान के लिए किताबत वाला वसफ है तो वो मुतहर्रिकुल असाबे है, और जब उसके लिए ये वसफ साबित ना हो फिर वो साकिनुल असाबिया हो सकता है। तो जरूरिया मुतलका में क्या जिक्र होता है? कि ये निस्बत जरूरी है जात मौजू के लिए जब तक उसकी जात मौजूद है। और मशरूता आम्मा में क्या जिक्र होता है? कि ये निस्बत जरूरी है जब तक ये वस्फ उनवानी है जात मौजू के लिए। और जबकि वक्तिया मुतलका, उसमें भी जरूरत जिक्र होती है लेकिन वक्त मुआयन के अंदर, जैसे कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बिस जरूरती, हर चांद के लिए ग्रहण लगना जरूरी है लेकिन हर वक्त या एक वक्त मुआयन में, एक वक्त मुआयन में, और वो किस वक्त है? वक्त हलूलतिल अर्जी बैनहू व बैन शमसी, जिस वक्त जमीन बीच में आ जाए चांद और सूरज के। और इसी तरह चांद से ग्रहण की नफी की सालिबा में, ला शै अमीन अल कमर बि मुनखसिफिन बि जरूरती वक्त तरबीय, तरबीय के वक्त चांद से ग्रहण की नफी जरूरी है, उस वक्त उसको ग्रहण नहीं लग सकता। तरबिया अव्वल 7 या 8 तारीख को, और तरबिया सानी जो है ये 20-21 के लगभग भाई। इन तारीखों में सामने सूरज होता है तो चांद जमीन के दाएं तरफ होगा या बाएं तरफ, तो दोनों सूरज के सामने एक दूसरे के बराबर में हैं, तो दोनों पर रोशनी पड़ रही है और चांद का निसफ हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दरअसल ये निसफ नहीं है बल्कि चांद का रोबो है, चौथा हिस्सा है, इसलिए इसको तरबिया कहते हैं। और ये मैंने बताया दो है तरबिया, एक तरबिया अव्वल जो 7-8 तारीख को होती है, और एक तरबिया सानी है जो महीने के आखिर में, भाई चांद शुरू में बढ़ता चला जाता है यहां तक कि 14वीं रात को पूरा चांद हमें नजर आता है, पूरा चांद, इसको बदर कहते हैं, 14वीं रात का चांद। तो इसको हम कहते तो पूरा चांद है लेकिन दर हकीकत यह पूरा चांद नहीं है बल्कि चांद का निसफ है, क्योंकि चांद की दूसरी जानिब तो हमसे छुपी हुई है, तो निसफ छुपी हुई है और निसफ हमें पूरी नजर आ रही है। फिर उसके बाद चांद छोटा होना शुरू होता है और ये 21-22 के लगभग ये फिर इसका जो है रुबो हमें दिखाई देता है, यानी आधा चांद हमें दिखाई देता है, तो ये तरबिया सानी है। तो तरबिया अव्वल और तरबिया सानी में जमीन और चांद एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, यानी यूं कह लें कि तरबिया अव्वल और सानी में चांद जमीन के या दाएं तरफ होगा या बाएं तरफ, तो जिस तरफ भी है जमीन के बराबर में है और सामने सूरज है तो दोनों पर रोशनी पड़ रही है और इस वक्त चांद ग्रहण नहीं लग सकता, भाई कोई एहतमाल ही नहीं इस वक्त चांद ग्रहण लगने का। इसीलिए इन्होंने कहा ला शय अमीन अल कमर बिमुन खसिफिन बिस जरूरती वक्त तरबी, तरबी के वक्त कोई चांद ग्रहण नहीं लग सकता, यानी चांद को ग्रहण न लगना तरबिया के वक्त जरूरी है। तो इसको वक्तिया मुतलका कहते हैं, वक्तिया इसलिए क्योंकि इसमें जरूरत मुकैद है एक मुअय्यन वक्त के साथ, और मुतलका इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ला दवाम की कैद नहीं है। और उसके बाद चौथी किस्म आपने पढ़ी थी मुंतशिरा मुतलका, मुंतशिरा मुतलका वो कजिया है जिसमें यह जिक्र किया जाए कि ये निस्बत जरूरी है किसी गैर मुअय्यन वक्त में, जैसे कुल इंसान इन मुतनफिस बि जरूरती वक्तम मा, हर इंसान मुतनफिस है, यानी यूं कहें हर इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है वक्तम मा किसी न किसी वक्त में। और सालिबा जो था ला शय अमीन अल इंसान बि मुतनफिस बि जरूरती वक्तम मा, कि कोई भी इंसान जो है उसके लिए सांस न लेना जरूरी है वक्तम मा किसी न किसी वक्त में, तो किसी वक्त में सांस लेना जरूरी और किसी वक्त में सांस न लेना जरूरी, तो देखो यहां भी जरूरत जिक्र हुई लेकिन वक्त गैर मुअय्यन में, तो इसको इसलिए मुंतशिरा आम्मा कहते हैं। मुंतशिरा इसलिए क्योंकि वक्त गैर मुअय्यन है इसमें, और आम्मा इसलिए क्योंकि आगे एक मुंतशिरा भी है और उसमें ला दवाम की कैद है, तो वो मुंतशिरा है क्योंकि उसमें कैद है, और इसमें कैद नहीं तो इसको मुंतशिरा मुतलका कहेंगे। मुतलक का क्या माना, जिसमें कोई कैद ना हो। भाई आगे देखिए, भाई मतन देखिए भाई, औ बि दवामी हा मादाम जातु फदाइमतुन मुतलकतुन औ मादाम अलवस्फु फउर्फियतुन आमतुन। भाई पहले चार कजियों में बिस जरूरत की कैद थी, अगले दो जो कजिए हैं उनमें बिद दवाम की कैद होगी, उसमें बिद दवाम की कैद होगी, यानी मौजू के लिए महमूल का इस बात होगा दाइमन निस्बते ईजाबी में, निस्बते मौजू के लिए महमूल का सबूत होगा दाइमन, या निस्बते सलबी में मौजू से महमूल की नफी होगी दाइमन, यानी इसमें दवाम, बस यूं समझें कि उसमें दवाम जिक्र होगा। क्या जिक्र होगा? दवाम जिक्र होगा, और वो फिर निस्बत ईजाबी भी हो सकती है और सलबी भी हो सकती है। और फिर याद रखना ये जो दवाम है ये दो किस्म पर है, एक दवामे जाती है और एक दवामे वस्फी है। दवामे जाती नाम से ही पता चल रहा है, जहां दवाम होता है जात के एतबार से, और दवामे वस्फी जहां दवाम होता है वसफ के एतबार से। तो दवामे जाती जो है वो दाइमा मुतलका के अंदर आएगा, और दवामे वस्फी जो है वो उर्फिया आम्मा के अंदर आएगा। तवज्जो है? दवा में जाती किस में आएगा? दाइमा मुतलका में, और दवा में वस्फी किस में आएगा? उर्फिया आम्मा में। भाई मैंने आपको बतलाया कि अगले दोनों में कौन सी जिहत जिक्र होगी? दवाम की। और ये दवाम जो है दो किस्म पर है, कभी जात के एतबार से दवाम होता है और कभी वसफ के एतबार से दवाम होता है। जात के एतबार से दवाम का माना यह है कि जब तक जात मौजू मौजूद है, जब तक ये यूं कहें ये निस्बत दाइमन है, जब तक जात मौजू मौजूद है ये निस्बत दाइमन है, जब तक जात मौजू मौजूद है। और दवाम वस्फी यह है कि यह निस्बत दाइमन है जब तक यह वस्फ उनवानी या यह वसफ मौजू के लिए साबित है। तवज्जो है, देखो मैंने मिसालें लिखवाई थी, मिसालों पर जरा नजर रखें, बात खूब वाजे हो जाएगी। देखिए दाइमा मुतलका की मैंने आपको दोनों मिसालें लिखवा दी थी, मुजिबा भी और सालिबा भी। दाइमा मुतलका कापी पर नजर रखें भाई, क्या लिखवाई थी? कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवामी, और सालिबा क्या थी? वला शय अमीनल फलके बिसाकिनिन बिद्दवामी। अच्छा, कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवामी, हर फलक यानी हर आसमान मुतहर्रिक, वो हरकत कर रहा है, बिद्दवामी दायमी तौर पर यानी मुसलसल। मैंने आपको बतलाया था कि फलासफा यूनान का अकीदा यह है कि आसमान नौ है और ये आसमान हर वक्त हरकत करते रहते हैं। इनमें से एक आसमान के अंदर चांद लगा हुआ है और ये आसमान शफाफ है शीशे की तरह, और चांद इसमें लगा हुआ है। अब ये जो आसमान है ये घूमता है और इसके घूमने की वजह से हमें चांद भी हरकत करता हुआ नजर आता है। तो ये दरअसल चांद नहीं हरकत कर रहा बल्कि ये वो आसमान घूम रहा है। इसी तरह सूरज भी एक आसमान के अंदर लगा हुआ है, जैसे छत के अंदर बल्ब और पंखे लगे होते हैं और वो आसमान घूम रहा है। इसलिए हमें यूं मालूम होता है कि रोजाना सूरज मशरिक से निकलता है और घूमते घूमते मगरिब में गुरूब हो जाता है। तो ये दरअसल सूरज की हरकत नहीं है बल्कि आसमान की हरकत है। ये कदीम फलासफा का नजरिया था। इसी तरह वो कहते हैं ये जो सितारे हैं ये भी आठवें आसमान के अंदर लगे हुए हैं और आसमान इनसे भरा हुआ है, हर तरफ उस पर सितारे ही सितारे लगे हैं और वो आसमान घूम रहा है। इसीलिए सितारों पर भी आप गौर करें तो ये भी मशरिक से तुलू होते हैं, शाम के वक्त निकलते दिखाई देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए मगरिब की तरफ जाते हैं। तो मनातिका का अकीदा यह है कि आसमान हर वक्त हरकत में रहते हैं। यह जो हरकत है यह इनका वसफ है भाई, और यह वसफ इनसे जुदा नहीं होता। ये इनकी जात का हिस्सा तो नहीं, इनका वसफ है लेकिन इनसे जुदा नहीं होता। ये हरकत इनके लिए दाइमन साबित है, हमेशा ये हरकत करते रहते हैं। तो कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन, हर आसमान हरकत कर रहा है, बिद्दवामी दाइमी तौर पर। और ये दवाम जात के एतबार से है। ये किस एतबार से है? जात के एतबार से, यानी जब तक फलक की जात मौजूद है इसके लिए हरकत दाइमन साबित है, हमेशा यह हरकत करता है। तो यह है दाइमा मुतलका। दाइमा मुतलका में क्या जिक्र होता है कि यह निस्बत दाइमन है। पहले आप क्या कहते थे? यह कि निस्बत जरूरी है, वो पहले चार में था कि यह निस्बत जरूरी है जात के एतबार से या वसफ के एतबार से या वक्त मुअय्यन के एतबार से या वक्त गैर मुअय्यन के एतबार से, जबकि दाइमा मुतलका और उर्फिया आमा में जरूरत नहीं जिक्र होगी, दवाम जिक्र होगा कि यह निस्बत दाइमन है। यह निस्बत दाइमन है जब तक जात मौजू मौजूद है, जब तक आसमान मौजूद है इसके लिए हरकत दायमी तौर पर साबित है। तो यह दवाम कितनी किस्म का है? एक दवा में जाती है और एक दवा में वस्फी है। दाइमा मुतलका में दवा में जाती जिक्र होगा और उर्फिया आम्मा में दवा में वस्फी जिक्र होगा। तो यहां पर देखो कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवामी, हर फलक जो है वो घूम रहा है दायमी तौर पर। तो यहां ये जो फलक है उसके लिए हरकत दाइमन साबित है उसकी जात की वजह से। किसकी वजह से? तो कैसे कहेंगे, ताबीर कैसे करेंगे दाइमा मुतलका को? कि यह निस्बत दाइमी है जब तक जात मौजू मौजूद है। निस्बत ईजाबी भी हो सकती है और सलबी भी, तो यह निस्बत दाइमी है जब तक जात मौजू मौजूद है। और उर्फिया अम्मा में क्या कहेंगे, यह निस्बत दाइमी है जब तक वस्फ मौजू मौजूद है। फर्क समझ में आया? तो दायमा मुतलका की पहली मिसाल, कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवामी, हर आसमान हरकत कर रहा है दाइमी तौर पर। यह कजिया मुजिबा की मिसाल, कजिया सालिबा की मिसाल, ला शैअ मिनल फलकि बिसाकिनिन, कोई आसमान साकिन नहीं है बिद्दवामी दाइमी तौर पर, यानी हर आसमान से सुकून की नफी कर दी दाइमी तौर पर, कि आसमान के लिए सुकून जो है वो दाइमन मुंतफी है, आसमानों से सुकून जी। तो कहते हैं वला शै अमीन अल फलक बिसाकिनिन बिद्दवामी, और कोई भी आसमान साकिन नहीं है दाइमी तौर पर, दाइमी तौर पर। माना समझ में आ गया? और उर्फिया आमा में मैंने अभी बताया, उर्फिया आमा में भी दवाम जिक्र होगा, लेकिन कौन सा दवाम, दवा में वस्फी जिक्र होगा, दवा में वस्फी। मैंने कल आपको बतलाया था कि मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा बिल्कुल एक जैसे हैं, मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसी तरह जरूरिया मुतलका और दाइमा मुतलका ये दोनों भी एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ यह है कि जरूरिया मुतलका में जरूरत की कैद है और दाइमा मुतलका में दवाम की कैद है। तवज्जो है, दाइमा मुतलका अभी हमने पढ़ा, इसमें दवाम की कैद जिक्र हुई, कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिद्दवामी, और जरूरिया मुतलका में जरूरत की कैद थी, कुल्लु इंसानिन हैवानुन बेजरूरती। तो याद रखना, यह जरूरिया मुतलका और दाइमा मुतलका बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ एक में जरूरत की कैद है तो दूसरे में भी दवाम की कैद है। जो मिसाल एक के लिए है वही मिसाल दूसरे के लिए भी बना लें, सिर्फ भी जरूरत की जगह भी दवाम ले आए। जरूरिया मुतलका में क्या ले आए, बे जरूरत, और दाइमा मुतलका में बे दवाम की कैद ले आए। वही मिसाल ले आओ, वही मिसाल जो जरूरिया मुतलका की थी, क्या मिसाल थी, कुल्लो इंसान इन हैवान बे जरूरत, इस भी जरूरत की जगह बे दवाम ले आओ, कुल्लो इंसान इन हैवान उन बे दवामी, हर इंसान हैवान है दायमी तौर पर, यह दायमा मुतलका बन गया। भी जरूरत थी तो जरूरिया मुतलका, और भी दवाम आ गई कैद तो दायमा मुतलका बन गया। कुल्लो इंसान इन हैवान उन बे दवामी, हर इंसान हैवान है दायमी तौर पर। सालिबा ले आए, ला शैअ अमीनल इंसान भी हजरिन, कोई इंसान पत्थर नहीं है बे जरूरती, यकीनी तौर पर। यह किसमें है, जरूरिया मुतलका में। अब इस भी जरूरत की जगह क्या ले आओ, बे दवाम ले आओ, तो यह दायमा मुतलका बन जाएगा। ला शैअ अमीनल इंसान भी हजरिन बे दवामी, कोई भी इंसान पत्थर नहीं है दायमी तौर पर। तो इंसान से पत्थर होने की नफी कर दी दवाम के तरीके पर। किस तरीके पर, कि यह नफी दायमन होगी, कभी भी पत्थर साबित नहीं हो सकता इंसान के, पत्थर नहीं साबित होगा इंसान के लिए, बल्कि दायमन क्या होगी, पत्थर की इंसान से नफी होगी। तो जरूरिया मुतलका में कौन सी कैद, बे जरूरत, और दायमा मुतलका में बिद दवाम की। तो दोनों की मिसालें बिल्कुल एक जैसी, सिर्फ बिद जरूरत की जगह बिद दवाम ले आओ या बिद दवाम की जगह बे जरूरत ले आओ। और इसी तरह अगला है उर्फिया आम्मा, उर्फिया आम्मा और मशरूता आम्मा बिल्कुल एक जैसे हैं। मशरूता आम्मा में जरूरत की कैद है और उर्फिया आम्मा में बिद दवाम की कैद है। मशरूता आम्मा की मिसाल क्या थी, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिज़रूरती मादामा कातिबन, इसी में बिज़रूरत की जगह बिद्दवाम ले आओ, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिद्दवामी मादामा कातिबन, तो यह उर्फिया आम्मा बन गया। देखो इसमें ज़ात मौजू के लिए यह निस्बत दाइमी है, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिद्दवामी, हर कातिब क्या है, मुतहर्रिकुल असाबिअ है दाइमी तौर पर, मा दाम कातिबन, जब तक वो कातिब है, यानी जब तक उसके लिए यह वस्व उनवानी साबित है, तो इसको उर्फिया आम्मा कहते हैं। तो फिर दोहराएं, दाइमा मुतलका किसे कहते हैं, जिसमें यह बयान हो कि यह निस्बत दाइमी है। पहले चार में क्या था, यह निस्बत जरूरी है, अब अगले दो में क्या है, यह निस्बत दाइमी है। तो दाइमा मुतलका वो है जिसमें बयान हो कि यह निस्बत दाइमी है जब तक जात मौजूद मौजूद है। और उर्फिया आमा में क्या जिक्र होगा कि यह निस्बत दाइमी है जब तक वस्फ मौजू मौजूद है। जब तक मैंने बताया ना, दवाम दो किस्म पर है, एक जाती है जब तक जात मौजूद है, और एक वस्वी है जब तक वसफ मौजूद है। तो दाइमा मुतलका में क्या जिक्र होगा कि यह निस्बत दाइमी है जब तक जात मौजू मौजूद है। हर आसमान हरकत करता रहेगा दाइमान जब तक उसकी जात मौजूद है, और हर कातिब जो है उसकी उंगलियां हरकत करेंगी दाइमी जब तक वो जब तक उसके लिए यह वसफ किताबत वाला साबित है। तो जरूरिया मुतलका में क्या जिक्र होगा, मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं भाई ताकि खूब अच्छी तरह जहन में जम जाए। दाइमा मुतलका में क्या बयान होगा कि यह निस्बत दाइमी है जब तक जात मौजू मौजूद है, और उर्फिया आमा में क्या जिक्र होगा, यह निस्बत जरूरी है जब तक ये निस्बत जरूरी है जब तक वस्फ मौजू मौजूद है। देखिए भाई अब किताब पर मतन देखिए, आओ बिदवामीहा, तवज्जो है, देखिए भाई ये बिदवामीहा का अतफ हो रहा है, पीछे आया था एक सतर कबल मतन में, बिजरूरतिन निस्बती इनकान अल हुक्म फीहा बिजरूरतिन निस्बती, अगर कजिए में हुक्म हो निस्बत के जरूरी होने का, निस्बत के हां, अब इस जरूरी होने को हटा दें और इसकी जगह औ बिदवामी हा ले आए भाई, और बिदवामी हा में ये जो हा जमीर है ये निस्बत को राजे है, आई बिदवामी निस्बती। अब इबारत क्या बन गई, फइनकान अल हुक्म फीहा बिदवामी निस्बती मादाम जातु, इबारत बन गई भाई। तो कहते हैं अगर कजिए में यह हुक्म हो बिदवामी हा आई बिदवामी निस्बती, निस्बत के दाइमी होने का, मादाम जातु जब तक जात मौजू है, फदाइमतुन मुतलकतुन तो वो दाइमा मुतलका है, और मादाम अलवसु या कजिए में यह हुक्म हो कि निस्बत दाइमी है मादाम अलवसु जब तक वो वसफ है मौजू का, फउर्फियतुन आम्मतुन तो वो उर्फिया आम्मा है, औ बिफ़िअलियतिहा फमुतलकतुन आम्मतुन। अच्छा ये बाद में करते हैं, पहले आइए शरा देख लीजिए भाई, कौलुहु फदाइमतुन मुतलकतुन, शरा में जगह मिल गई भाई, कौलुहु फदाइमतुन मुतलकतुन वल फर्क बैन जरूरत व दवामी, यहां से फर्क जिक्र कर रहे हैं जरूरत और दवाम में, जरूरत और भाई याद रखो जरूरत में यह जिक्र होता है कि एक चीज दूसरी चीज के लिए जरूरी है, उससे जुदा हो ही नहीं सकती, एक चीज का दूसरी चीज से जुदा होना महाल है। जैसे कुल इंसान इन हैवान उन बेजरूरती, हर इंसान के लिए हैवान होना जरूरी है, यह हैवान इंसान से जुदा नहीं हो सकता, हैवान का इंसान से जुदा होना महाल है नामुमकिन है। तो बेजरूरत में क्या बयान होता है कि एक चीज दूसरी चीज के लिए जरूरी है, ईजाब में, या एक चीज की नफी दूसरी चीज से जरूरी है, यानी यूं कहें एक चीज दूसरी चीज के लिए जरूरी है, यानी इस चीज का उस चीज से जुदा होना महाल है। जबकि दवाम जो है, दवाम के अंदर यह बतलाया जाता है कि एक चीज दूसरी चीज के साथ दाइमन है, जरूरी नहीं है बल्कि दाइमन। हां फिर दवाम में दोनों एहतमाल आ गए, एक चीज दूसरी चीज के लिए जब दाइमी है तो हो सकता है जुदा होना मुमकिन हो सकता है जुदा होना मुमकिन ना हो। बेजरूरत में तो यह बयान किया जाता है कि ये इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता, इस चीज का जुदा होना या इस निस्बत का जुदा होना मुमकिन ही नहीं है, जबकि बिदवाम में सिर्फ यह बताया जाता है यह निस्बत दाइमी है। और उसमें फिर दो सूरतें, हो सकता है जुदा ही ना हो सके और हो सकता है जुदा हो सके। कुल्लो इंसान इन हैवान, हर इंसान हैवान है बेदवामी दायमी तौर पर, हर इंसान हैवान है दायमी तौर पर। और यह हैवान क्या इंसान से जुदा हो सकता है? जुदा नहीं। तो देखा यह भी हैवान भी दायमी है लेकिन इसमें इसका जुदा होना महाल है। और कुल फलक इन मुतहर्रिक उन बिदवामी, हर फलक मुतहर्रिक है बिदवाम दायमी तौर पर। और क्या यह हरकत फलक से जुदा हो सकती है कि नहीं, मुमकिन है या नहीं? यह उसकी जात का हिस्सा है या यह उसका एक वसफ है? यह उसका वसफ है। और वसफ जुदा हो सकता है या नहीं? भाई हैवान तो इंसान की जात का हिस्सा है, हैवान नहीं तो इंसान ही नहीं। भाई इंसान तो है किसका नाम? हैवान नातिक का। हैवान निकाल दोगे तो फिर हैवान नातिक हो सकता है? फिर तो हैवान नातिक ही नहीं हो सकता। तो वहां जुदा होना ही महाल होता है बिस जरूरत के अंदर, क्योंकि उसकी जात का हिस्सा होता है। तो बिस जरूरत में जुदा होना महाल होता है। और जबकि बिद दवाम उसमें दोनों एहतमाल, एक चीज दूसरी चीज के लिए दायमी तो होगी लेकिन हो सकता है जुदा हो सके, हो सकता है जुदा एक चीज दूसरी चीज के साथ दायमी है तो हो सकता है उसकी जात का हिस्सा हो, फिर तो जुदा ही नहीं हो सकती। और अगर जात का हिस्सा नहीं है लेकिन है दायमी तो फिर मालूम हो जुदा तो हो सकती है, अगरचे होती नहीं। जैसे हर आसमान क्या है? मुतहर्रिक है दायमी तौर पर। यह हरकत आसमान से जुदा नहीं होती। जब तक आसमान है यह क्या करता है? यह हरकत करता है। लेकिन जुदा होना मुमकिन तो है क्योंकि उसकी जात का हिस्सा नहीं। बात समझ में आ गई? तो फर्क क्या आया जरूरत और दवाम के अंदर? कि जरूरत में एक चीज जरूरी होती है उसके खिलाफ होना महाल होता है, और बिद दवाम उसमें एक चीज दूसरी चीज के लिए दाइमन होती है और उसमें दोनों इहतमाल हो सकता है जुदा हो सके और हो सकता है जुदा। बस इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है एक चीज दूसरी चीज के लिए दायमी है। जैसे मैंने बताया कुल्लो इंसान इन हैवान उन बिद दवामी, हर इंसान के लिए हैवान होना दायमी है। और कुल्लो फलक इन मुतहर्रिक उन बिद दवामी, इसी तरह फलक के लिए हरकत भी दायमी है लेकिन एक में दवाम कैसा है? जरूरी है, यानी जुदा उसका जुदा होना महाल, और एक में जुदा होना मुमकिन है। होता नहीं, हम बिलफेल की बात नहीं कर रहे जुदा होता है या नहीं, हम ये कह रहे हैं जुदा हो सकता है या नहीं। कुल्लो इंसान इन हैवान उन बिद दवामी, यहां यह हैवान इंसान से जुदा हो ही नहीं सकता। और कुल्लो फलक इन मुतहर्रिक उन बिद दवामी, यहां हरकत आसमान से जुदा हो सकती है लेकिन होती नहीं है। जुदा इसलिए हो सकती है क्योंकि उसकी जात का हिस्सा नहीं है, यह उसका वसफ है। और वसफ के बगैर मौसूफ हो सकता है या नहीं? वसफ के बगैर तो मौसूफ हो सकता है लेकिन जात के बगैर तो कोई चीज नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? तो देखिए किताब पर قوله فدائمة مطلقة والفرق بين الضرورة والدوام, कहते हैं जरूरत और दवाम में फर्क यह है कि अन्न जरूरत ही इस्तिहालत फिका की शय इन अन शय इन, इन फिका का माना है जुदा होना, इस्तिहाला का माना है महाल होना यानी नामुमकिन होना। कहते हैं फर्क जो है जरूरत और दवाम में यह है कि अन्न जरूरत ही इस्तिहालत फिका की शय इन अन शय इन, कि जरूरत जो है वो महाल होना है, महाल होना है। क्या महाल है? इनफिकाक यानी जुदा होना, जुदाई का महाल होना है एक चीज का अनशय इन दूसरी चीज से। जरूरत किस चीज का नाम है? अन्न जरूरत ही इस्तिहालत फिका की शय इन अनशय इन, ये एक शय का दूसरी शय से जुदा होने का महाल होना है। वह दवाम अदम इनफिका की ही अनहु, और जो दवाम होता है उसमें एक शय दूसरी शय से जुदा नहीं होती, उसमें आदम इनफिकाक होता है। क्या होता है? एक शय दूसरी शय से जुदा नहीं होती, एक शय दूसरी शय से। फिर हो सकता है जुदा होना महाल हो और हो सकता है जुदा होना महाल ना हो। तो कहते हैं वह दवाम आदम उनफिका की ही अन हो, और दवाम जो है वो एक शय का दूसरी शय से जुदा न होना है। दवाम जो है एक शय का दूसरी शय से जुदा न होना है, और जरूरत जो है एक शय का दूसरी शय से जुदाई का महाल होना है। फिर देखिए तर्जमा, अलफर्क बैन जरूरत व दवामी, जरूरत और दवाम में फर्क यह है कि अन्न जरूरत ही इस्तिहालत फिका की शय इन अन शय इन, कि जरूरत जो है वो एक शय का दूसरी शय से जुदाई का महाल होना है। व दवाम आदम उन फिका की ही अनहू, और दवाम जो है इनफिकाकुहू, हा जमीर राजे है शय को, भाई शय को, और आनहू की जमीर भी किसको राजे, शय को। व दवाम आदम उनफिका की ही आनहू, और दवाम जो है वो एक शय का दूसरी शय से जुदा न होना है। वह इल्लम यकुन मुस्तहीलन, अगरचे वो महाल न हो, का दवामी हरकतिल फलकी, जैसे के फलक की हरकत का दायमी होना, अगरचे यह महाल नहीं है जुदा होना, लेकिन है दायमी, लेकिन जुदा हो सकता है लेकिन होती नहीं। सुम्मत दवामु आनी आदमन फिका की निस्बतिल इजाबियती अविसलबियती अनिल मौजूई इम्मा जातीयुन अव वस्फीयुन, फिर ये जो दवाम है यानी निस्बत ईजाबी या सलबी का जुदा न होना, तर्जमे पे नजर है, तर्जमा मैं आखिर से कर रहा हूं, फिर सुम्मत दवामु, फिर ये जो दवाम है, आनी मेरी मुराद ये है, आदमन फिका की निस्बतिल ईजाबियती अविसलबियती, निस्बत ईजाबी या सलबी का जुदा न होना, अनिल मौजूई किस से, मौजू से, इम्मा जातीयुन अव वस्फीयुन, या तो ये जाती होगा या वस्फी, यानी ये दवाम जाती होगा या वस्फी होगा। फइन कान अल हुक्मु फिल मुवज्जहति बिद्दवामि ज़ातीय, अगर हुक्म हो कजिया मुवज्जह के अंदर दवाम जाती का, ऐ बिआदम इन्फिका की निस्बती अनिल मौजूई मादामा जातुल मौजूई मौजूदतन सुम्मियतिल कजियतु दाइमतन, फिर देखें, फइन कान, अगर हुक्म हो मुवज्जह में दवाम जाती का, ऐ बिआदम इन्फिका, यानी के निस्बत के जुदा न होने का, अनिल मौजूई किस से, मौजू से, मादामा जातुल मौजूई मौजूदतन, जब तक जात मौजू मौजूद है, तो सुम्मियतिल कजियतु दाइमतन, तो उस कजिये को क्या कहते हैं, दाइमा। मैंने क्या बतलाया था, क्या कहते हैं उसको, दाइमा मुतलका कहते हैं। तो दाइमा जो है ये दाइमा किस वजह से कहते हैं, वो वजह भी जिक्र करेंगे, और मुतलका किस वजह से कहते हैं, दाइमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दवाम की कैद है, और मुतलका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्फ उनवानी की कोई कैद नहीं है। तो कहते हैं सुम्मियतिल कजियतु दाइमतन, तो इस कजिये को दाइमा कहते हैं, लिश्तिमालिहा अलद दवामी, इस वजह से कि यह मुश्तमिल है दवाम पर, व मुतलकतन, और इसको मुतलका कहते हैं, लिआदमी तकीद दवामी बिल वस्फिल उनवानी, क्योंकि ये दवाम मुकैद नहीं है वस्फे उनवानी के साथ। आगे देखिए, कहते हैं व इनकान अल हुक्म बिद दवामिल वस्फी, और अगर कजिये में हुक्म हो दवाम वस्फी का, ऐ बिआदम इन्फिका की निस्बती अनजातिल मौजूई, यानी के निस्बत के जुदा न होने का, अनजातिल मौजूई किस से, जात के निस्बत जुदा नहीं हो सकती जात मौजू से, मादाम अल वस्फुल उनवानी साबितन लितिल का जाती, जब तक वो वस्फ उनवानी साबित है उस जात के लिए, सुम्मियत उर्फियतन, तो इस कजिए को क्या कहते हैं, उर्फिया कहते हैं। अच्छा देखो, शारिह ने दाइमा मुतलका को बयान किया, दाइमा कि, और बतलाया कि उसमें दवाम जात के एतबार से होता है, और अब आगे बयान करने लगे हैं उर्फिया आम्मा को, और उसमें दवाम वसफ के एतबार से होता है। तवज्जो है, मैंने आपको बताया था यह दवाम दो किस्म पर है, या जात के एतबार से होगा या वसफ के एतबार से। तो दाइमा मुतलका में दवाम होता है जात मौजू के एतबार से, और उर्फिया आम्मा में दवाम होता है वस्फ मौजू के एतबार से। शारिह ने दाइमा मुतलका की मिसाल नहीं जिक्र की, बाकी सब की वह मिसालें जिक्र करते चले जा रहे हैं, लेकिन दाइमा मुतलका की मिसाल नहीं जिक्र की। और आगे देखो, उर्फिया आम्मा का बयान शुरू हो गया। वजह यह, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो मिसाल है जरूरिया मुतलका की, वही मिसाल बन जाएगी दाइमा मुतलका की। सिर्फ इतना करें कि वहां बे जरूरत की कैद है, उसको हटाकर बे दवाम की कैद बढ़ा दें, तो इसलिए शारिह ने मिसालों को जिक्र नहीं किया। तो गोया दाइमा मुतलका की मिसाल क्या बनेगी, वो जो जरूरिया मुतलका की मिसाल थी, कुल्लु इंसानिन हैवानोन बेजरूरती, यहां बे जरूरत की जगह बिद्दवाम लगा दें, कुल्लु इंसानिन हैवानुन बिद्दवामी, वला शय अमीन अल हजरी भी इंसानिन बिद्दवामी। देखा, ये दोनों मिसालें किसकी हो गई, दाइमा मुतलका की। तो कहते हैं वह इनकान अल हुक्म बिद्दवामिल वस्फी, अगर कजिए में दवाम वस्फी का हुक्म हो, ऐ बिआदम इन्फिकाक इन निस्बती अन ज़ातिल मौज़ूई, यानी कि निस्बत के जुदा न होने का ज़ात मौज़ू से, मादामल वस्फुल उनवानी साबितन लितिलका ज़ाती, जब तक वस्फ उनवानी साबित है उस ज़ात के लिए, सुम्मियत उर्फियतन, तो इस कजिए को उर्फिया कहते हैं। भाई उर्फिया क्यों कहते हैं, वजह बयान करने लगे हैं। वजह यह कि उर्फ कहते हैं आम लोगों की जो आदत है और आम लोगों का तरीका, तो आम लोग जब कजिए में जिहत जिक्र न की जाए कि आम लोग कजिया सालिबा से यही माना समझते हैं, आम लोग कजिया सालिबा से यही माना समझते हैं। देखो जो मैंने मिसालें लिखवाई थी, जरा उन मिसालों पर नजर रखो। उर्फी आम्मा की मिसाल मैंने क्या लिखवाई थी, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिई बिद्दवामी मादामा कातिबन, बात समझ में आ रही है, कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिई बिद्दवामी मादामा कातिबन, हर कातिब मुतहर्रिकुल असाबिय है दायमी तौर पर, मादामा कातिबन, जब तक वो कातिब है, यानी जब तक उसके लिए ये वस्फ उनवानी साबित है। और नफी वाली मिसाल क्या थी, सालिबा की क्या मिसाल थी, ला शय अमीनल कातिबी बिसाकिनिल असाबिई बिद्दवामी मादामा कातिबन, कोई भी कातिब साकिनुल असाबिय नहीं दायमी तौर पर, मादामा कातिबन, जब तक वो कातिब है। कहते हैं इसको उर्फिया आम्मा क्यों कहते हैं, वो वजह शरा में जिक्र हो रही है। कहते हैं आम लोग ये जो कजिया सालिबा है इससे यही माना समझते हैं, आप अगरचे इसमें जिहत को जिक्र न करें फिर भी आम लोग इससे यही माना समझते हैं। आप किसी को कहो हाथ से लिखने वाले की उंगलियां साकिन नहीं होती, हाथ से लिखने वाले की उंगलियां साकिन नहीं होती। देखो सिर्फ इतना जिक्र हुआ, क्या जिक्र हुआ, आम आदमी के सामने जिक्र कर दें, उसमें जिहत भी जिक्र ना करें, मादामा कातिबान को भी जिक्र ना करें, सिर्फ इतना कहें कि किताबत करने वाले की उंगलियां कभी साकिन नहीं होती, सिर्फ इतना कहें किताबत करने वाले की उंगलियां कभी साकिन नहीं होती, आपने मादामा कातिबन की कैद इसमें नहीं लगाई, जब तक वो कातिब है, बस वैसे ही जुमला कह दिया, किताबत करने वाली की उंगलियां साकिन नहीं होती। आम लोग भी समझ जाते हैं कि जो इसे सुकून की नफी हो रही है कातिब से, ये वस्फे किताबत की वजह से है। किसकी वजह से है, यानी जब तक वस्फे किताबत है यह साकिनुल असाबिया नहीं हो सकता। अब आपने उसको यह नहीं कहा मादामा कातिबन, जब तक वो क्या हो, कातिब हो, लेकिन आम आदमी यही समझता है। किसी के सामने भी आप क्या कहें, हाथ से लिखने वाली की उंगलियां साकिन नहीं होती, वो खुद ही समझ गया, हां मालूम है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, जब तक लिख रहा है उंगलियां साकिन नहीं है। तो आम उर्फ भी इससे यही माना समझते हैं, किससे, कजियाए सालिबा से, किससे, कजियाए सालिबा से यही माना समझते हैं कि जब तक इसके लिए यह वाली सिफत है तो इसके लिए यह निस्बत साबित है, यह सल्ब वाली निस्बत इसके लिए, जब तक यह किताबत का वसफ है इसकी उंगलियां साकिन नहीं है। आम लोग भी इससे समझते हैं, इसलिए इसका नाम उर्फिया रखा। सिर्फ मंतिक के माहिरीन ही नहीं, आम लोग भी इसका यही माना समझते हैं। यानी यूं कहो, जब मुश्तक पर कोई हुक्म लगाया जाता है तो उस हुक्म की इल्लत और सबब जो है वो वसफ होता है, वो वसफ होता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं अकरिमिल उलमा, उलमा का इकराम करो, किसका, देखो मैंने किसी जात पे हुक्म लगाया या एक जात माल वसफ पे हुक्म लगाया, यानी उसके लिए मैंने आपको कहा कि उलमा का इकराम करो, तो सुनने वाला खुद ही समझ गया यहां पर कि ये जो हुक्म दिया जा रहा है इकराम का, ये उसके वस्फे इलम की वजह से है, किसी की जात की वजह से नहीं है बल्कि उसके वस्फे इलम की वजह से है। तो किसी मुश्तक पर जब कोई हुक्म लगाया जाता है तो उस हुक्म की इल्लत और सबब जो है वो वसफ होता है, वो वसफ होता है। किसी मुश्तक पर जब हुक्म लगाया जाता है तो उसकी इल्लत और सबब क्या होता है, वो वसफ होता है। तो यहां पर भी जब आप किसी आम आदमी के सामने कहें कि किताबत करने वाले की उंगलियां साकिन नहीं होती, वो खुद ही समझ गया कि ये जो इससे उंगलियां साकिन होने की नफी की जा रही है किस लिए की जा रही है, क्योंकि ये किताबत करने वाला है और ये किताबत जब तक करेगा उंगलियां साकिन नहीं हो सकती। तो आम लोग भी इसमें कजिया सालिबा, तवज्जो है, मुजिबा की बात मैं नहीं कर रहा, कजिया सालिबा के अंदर आम लोग भी इस चीज का यही माना समझते हैं, इसलिए इसको उर्फिया कहते हैं। उर्फ किसे कहते हैं? आम लोगों की आदत और तरीका। तो आम लोग भी इससे यही माना समझते हैं, लिहाजा इसका नाम ही क्या रख दिया? उर्फिया। और मुजिबा, मुजिबा में भी ऐसा कभी होता है और कभी नहीं होता। मुजिबा में वो आम लोग ये माना कभी समझते हैं और कभी नहीं समझते, तो सालिबा में जरूर समझ जाते हैं कि ये जो एक चीज की नफी की जा रही है दूसरी चीज से, तो ये इसके इस वसफ की वजह से है। जैसे आप कहें सोए हुए आदमी को कुछ सुनाई नहीं देता, सोए हुए आदमी को कुछ सुनाई
नहीं,
देखा, किसी आम आदमी के सामने कहें वो समझ जाएगा कि ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा, सोने के वसफ की वजह से। जब तक सोने का नींद का वसफ है उसके लिए उसको सुनाई नहीं देगा। तो कहते हैं सुमियत उर्फियतन, इस कजिए को उर्फिया कहते हैं, लिअन्ना अहलल उर्फिया फहमूना हादल माना मिनल कजियत सालिबती, इसलिए क्योंकि अहले उर्फ यानी आम लोग जो हैं वो समझते हैं यही वाला माना, मिनल कजियत सालिबती, किससे? कजिया सालिबा से। बात समझ में आ गई, क्योंकि आम लोग जो हैं वो यही माना समझते हैं कजिया सालिबा से, कि ये जो नफी की जा रही है इस वसफ की वजह से है, जब तक ये वसफ है ये नफी रहेगी। सोने वाले को सुनाई नहीं देता, जब तक वो सो रहा है उसे सुनाई नहीं देगा। कहते हैं बल मिनल मूजिबती ऐजन इंदल इतलाकी, बल्कि मूजिबा से भी इंदल इतलाकी, जबकि मुतलक हो, वो क्या हो? मुतलक हो, यानी उसमें जब जिहत वगैरह जिक्र ना हो। मैंने बताया भाई सालिबा से आम लोग यही माना समझते हैं, जब एक चीज से दूसरी चीज की नफी की जा रही है तो लोग समझते हैं इस वसफ की वजह से यह नफी की जा रही है, जब तक यह वसफ है यह नफी रहेगी। सोने वाला बात को नहीं समझता, तो जब तक ये सोना और नींद उसके लिए है तब तक इसके लिए न समझना दाइमी है। बल्कि कहते मूजिबा में भी ऐसा होता है, बल मिनल मूजिबती ऐजन, बल्कि मूजिबा से भी यही लोग समझते हैं, इंदल इतलाकी, जब उसको मुतलक जिक्र किया जाए यानी बगैर जिहत के। मैंने बताया कि सालिबा में तो हर जगह आम लोग इसके यही माना समझते हैं कि जब तक ये वसफ है ये वाली निस्बत साबित है, यानी सल्ब वाली, सल्ब वाली निस्बत दायमी है। लेकिन मुजिबा में कभी होता है और कभी नहीं होता। शारह ने क्या कहा? बल मिनल मुजिबती ऐजन, बल्कि मुजिबा से भी यही समझते हैं लोग, इंदल इतलाकी, जब उसको मुतलक जिक्र किया जाए यानी दवाम को उसके साथ जिक्र न किया जाए। मसलन कहा जाए कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे, आम आदमी के सामने कहो लिखने वाले की उंगलियां हरकत करती रहती हैं, देखो ये मुजिबा है, लिखने वाले की उंगलियां हरकत करती रहती हैं, मुजिबा है। आम लोग भी इसे यही समझते हैं कि ये उंगलियां क्यों हरकत कर रही हैं, लिखने की वजह से, जब तक लिखता रहेगा ये उंगलियां हरकत करती रहेंगी। तो माना मुजिबा में भी ये समझते हैं, लेकिन मैंने बताया कि मुजिबा में हर जगह नहीं होगा, सालिबा में हर जगह होगा कि वो इसे दवाम समझेंगे, लेकिन मुजिबा के अंदर हर जगह ऐसा नहीं होगा। मसलन कुल्लु कातिबिन इंसानुन, हर कातिब क्या है? इंसान है। बेदवामी, किस तरीके पर? दाइम, जो कातिब है उसके लिए इंसान होना दाइमन होगा। अब आम लोगों के सामने ये कहो हर कातिब इंसान है, तो उससे ये माना उनको समझ में नहीं आएगा कि ये वस्फे किताबत की वजह से इंसान होना इंसान है ये दाइमी तौर पर। वह किसकी वजह से? वस्फ किताबत, हाँ वस्फ की। तो ये आम लोग इसे नहीं समझते। बहरहाल बस ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि इसको उर्फिया आम्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कजिया मुजिबा भी हो सकता है और सालिबा। सालिबा से आम लोग यही माना समझते हैं, आप उसमें जिहत और शर्त वगैरह जिक्र न करें फिर भी आम लोग इसका यही माना समझते हैं, जबकि मुजिबा में कभी यह माना समझेंगे और कभी नहीं समझेंगे। तो कहते हैं लिअन्न अहलल उर्फी यफहमूना हादल माना मिनल कज़ियत सालिबत, इसलिए क्योंकि आम लोग जो हैं कज़िया सालिबा से यही माना समझते हैं, बल मिनल मूजिबति अयज़न इंदल इतलाकी, बल्कि मूजिबा से भी इंदल इतलाकी इतलाक के वक्त, यानी जब उसमें जिहद जिक्र न हो मुतलक जिक्र हो। फ़ाइदा कीला, जब कहा जाए कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ, हर कातिब की उंगलियां हरकत करती हैं, फहीमू, तो आम लोग समझ जाते हैं कि अन्न हादल हुक्म साबितुन लहू मादाम कातिबन, के यह हुक्म यानी उंगलियों की हरकत वाला हुक्म उसके लिए साबित है, मादाम कातिबन, जब तक वो कातिब है, तो इसलिए इसको उर्फिया कहते हैं। और पूरा नाम क्या, उर्फिया आम्मा। तो आम्मा क्यों कहते हैं, कहते हैं वह आम्मतन, और इसको आम्मा कहते हैं लिकौनिहा आम्मा मिनल उर्फियतिल खासतिल्लती सयजी उज़िक्रुहा, इसलिए क्योंकि यह ज्यादा आम है, किसके मुकाबले में, उर्फिया खासा के मुकाबले में, अल्लती सयजी उज़िक्रुहा, यानी वो उर्फिया खासा कि जिसका जिक्र अन करीब आ जाएगा, तो ये उसके मुकाबले में ज्यादा आम है, तो इसलिए इसको आम्मा कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए फिर मतन पर। अबिफियालीयतिहा फमुतलकतुन आम्मतुन अबिआदम जरूरत खिलाफिहा फमुमकिनतुन आम्मतुन फहादिही बसाइतु। अबिफियालीयतिहा, मैंने बतलाया था मनातिका के नजदीक चार किस्म की जिहतें मोतबर हैं, चार कैफियतें मोतबर हैं, कैफियतें जो ज्यादा हैं लेकिन मोतबर कितनी हैं, चार। एक को वो ताबीर करते हैं बिल जरूरत से, एक को बिल इम्कान से, एक को बिल दवाम से, और एक को बिल फेल से। बिल जरूरत जिसमें यह बयान होता है कि यह निस्बत जरूरी है, बिल इम्कान जिसमें यह बयान होता है कि यह निस्बत मुमकिन है, बिल दवाम जो अभी हमने पढ़ा जिसमें यह जिक्र होता है कि यह निस्बत दाइमी है, और बिलफेल जिसमें यह बयान होता है कि यह निस्बत तीन जमानों में से किसी एक जमाने में है, तीन जमानों में से किसी एक जमाने में है। तो जिनमें जरूरत का बयान था वो कौन कौन से हैं, फिर दोहरा लें, जरूरिया मुतलका, मशरूता आम्मा, वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका। और जिन दो में दवाम की कैद है, दवाम की जिहत है, वो कौन कौन से हैं, दायमा मुतलका और उर्फिया आम्मा। और बाकी जो दो हैं उनका अब बयान आ गया। बसाइत आपने पढ़ा था आठ हैं, छह का बयान गुजर गया, अब सातवीं और आठवीं किस्म आ गई। कहते हैं औ बिफियालीयतिहा, ये हा जमीर निस्बत को राजे है, अ बिफियालीयति निस्बती बिफे, और इसी बिफियालीयत का आतफ भी उसी पर है वो जो पीछे आया था। फइनकान अल हुक्म फीहा बिजरूरतिन निस्बती, बिजरूरतिन निस्बती को उठाएं और उसकी जगह बिफियालीयतिन निस्बती रख दें। अब देखो तर्जमा, फइनकान अल हुक्म फीहा, अगर कजिए के अंदर हुक्म हो बिफियालीयतिन निस्बती, निस्बत के बिलफेल होने का, फमुतलकतुन आम्मतुन, तो वो क्या है, मुतलका आम्मा है, मुतलका आम्मा है। मुतलका आमा जिसमें बिलफेल की जिहत जिक्र हो, कौन सी जिहत जिक्र हो, बिलफेल की जिहत जिक्र हो, यानी यह जिक्र हो कि यह निस्बत जो है तीन जमानों में से किसी एक जमाने में है। बिलफेल का क्या माना कि यह निस्बत तीन जमानों में से, भाई बाजों में बेजरूरत की कैद थी उसमें यह जिक्र था कि यह निस्बत जरूरी है, बाजों में बिदवाम की कैद थी कि यह निस्बत दाइमी है, और बिलफेल वाले में क्या बयान होगा कि यह निस्बत तीन जमानों में से किसी एक जमाने के अंदर है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन कायमुन बिलफेली, जैद बिलफेल कायम है, मालूम हुआ उसके लिए यह क्याम तीन जमानों में से किसी एक जमाने के अंदर है। हर वक्त तो जैद के लिए क्याम नहीं है, कभी खड़ा होगा, कभी बैठा होगा, कभी लेटा होगा, तो यह जैद के लिए जो क्याम है यह तीन जमानों में से किसी एक जमाने में होगा। तो कहते हैं औ बिफियालीयतिहा, और अगर कजिए के अंदर हुक्म हो निस्बत के बिलफेल होने का, फमुतलकतुन आम्मतुन, तो फिर वो मुतलका आम्मा है। इसकी मैंने आपको मिसाल लिखवाई थी, कुल्लु इंसानिन ज़ाहिकुन बिलफेली, कापी पर नजर है, कुल्लु इंसानिन ज़ाहिकुन बिलफेली, हर इंसान ज़ाहिक है बिलफेल, यानी तीन जमानों में से किसी एक जमाने में वो हंसता, इंसान हंसता है लेकिन हर वक्त नहीं हंसता रहता, बल्कि किसी न किसी जमाने में वो हंसेगा, थोड़ी देर के लिए हंसेगा और फिर खामोश हो जाएगा। तो ये हंसना ये हर वक्त नहीं होता बल्कि तीन जमानों में से किसी एक जमाने में होगा। तो कुल्लु इंसान ज़ाहिकुन, हर इंसान के लिए ज़िहक साबित है बिल फेल, यानी तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। वला शय अमिनल इंसानी भी ज़ाहिकिन बिल फेली, और कोई भी इंसान ज़ाहिक नहीं है बिल फेल, यानी तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। यानी इंसान से ज़ाहिक की नफी है ज़िहक की, इंसान से ज़िहक की नफी है तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। इंसान का हंसना भी तीन जमानों में से किसी जमाने में होगा और न हंसना भी तीन जमानों में से किसी जमाने में होगा। तो ज़िहक का चाहे इस बात करें चाहे उसकी नफी करें इंसान से, ये तीन जमानों में से किसी एक जमाने में होगी। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। अब आइए शरा पर। कौलुहू औ बिफ़िअलियतिहा ऐ तहक्कुकिन निस्बती बिलफेली, यानी निस्बत का बिलफेल होना। बिफ़िअलियतिहा हाज़मीर किसको राजे, निस्बत को, वही बयान कर दी। ऐ तहक्कुकिन निस्बती बिलफेली, यानी उस निस्बत का बिलफेल होना। फल मुतलकतुल आम्मतु, तो वो कजिया क्या है, मुतलका आम्मा है। हियल्लती हुक्म फीहा, ये वो कजिया है जिसमें यह हुक्म लगाया जाता है। बिकौन निस्बति मुतहक्किकतन बिलफेली, कि ये वाली जो निस्बत है ये मुतहक्किक है यानी साबित है बिलफेल। ये वाली निस्बत बिलफेल साबित है। क्या माना बिलफेल, आई फी अहदिल अजमिनति सलासती, यानी तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। व तस्मियतुहा बिल मुतलकती, अच्छा भाई इसको मुतलका क्यों कहते हैं, मुतलका क्यों कहते हैं, तो वजह बतलाएंगे। कहते हैं इसलिए क्योंकि जब कजिए को मुतलकन जिक्र किया जाए, बिलफेल जिक्र न किया जाए, तो इससे यही मफहूम होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं जैदुन ज़ाहिकुन, जैद ज़ाहिक है, तो इससे क्या समझ में आता है, हर वक्त है या तीन जमानों में से किसी जमाने में है। तीन जमानों में से, देखा मैंने तो कोई जिहत जिक्र नहीं की, लेकिन मुतलकन जब कजिए को जिक्र करो तो यही समझ में आता है कि निस्बत क्या है, तीन जमानों में से किसी एक जमान। तो कहते हैं व तस्मियतुहा बिल मुतलकति लिअन्न हादा हुवल मफहूमु मिनल कजियति इंद इतलाकिहा, और इसको मुतलका कहते हैं क्योंकि यही मफहूम होता है, यही बात समझ में आती है मिनल कजियति कजिया से, इंद इतलाकिहा जब कजिया मुतलक हो यानी उसमें बिलफेल की जिहत न हो, तो भी कजिए से यही बात समझ में आती है। तवज्जो है, मुतलका आम्मा को मुतलका क्यों कहते हैं, क्योंकि कजिए को मुतलकन जिक्र किया जाए तो यही बात समझ में आती है कि यह निस्बत तीन जमानों में से किसी। मैंने तो कहा ज़ैदुन क़ायमुन, मैंने इसमें कोई जिहत लगाई, मुकय्यद किया नहीं, जिहत लगाई, तो मुतलक कजिया बोलो, तो उससे यही बात समझ में आती है कि जो निस्बत जिक्र की जा रही है यह हर वक्त नहीं है या जरूरी नहीं है बल्कि तीन जमानों में से किसी एक जमाने में है। ये माना है व तस्मियतुहा बिल मुतलकति लिअन्न हादा हुवल मफहूम मिनल कज़ियति इंद इतलाकिहा, और इसको मुतलका के नाम के साथ मौसूम करना इस वजह से है क्योंकि यही मफहूम होता है कजिया से जब कजिया मुतलक हो यानी उसमें जिहत जिक्र ना हो, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, मुतलका। तवज्जो है, इसमें तो बिल फेल की कैद है और बिल फेल से क्या समझ में आता है, तीन जमानों में से एक, लेकिन कह रहे हैं आम कजिए को जब जिक्र किया जाए तो उससे भी यही तीन जमानों में से कोई एक जमाना समझ में आता है। ज़ैदुन क़ायमुन, सुनने वाला समझ जाता है कि ये हर वक्त नहीं मुराद बल्कि तीन जमानों में से कोई एक जमान, तो मुतलक कजिए से ये समझ में आता है जो बिलफेल के कैद से समझ में आता है। तो बिलफेल वाले का नाम ही क्या रख दिया, मुतलका, कि हर कजिए से मुतलकन यही समझ में आता है जो इस बिलफेल वाले से समझ में आ रहा। वह आदमी तकीदिहा बे जरूरती अभी दवामी और गैर जालिका मिनल जिहाती, ये आदमी तकीदिहा इसका आतफ है इतलाकिहा पर, इंदा इतलाकिहा। ये आदमी तकीद से पहले जो लफ्ज आया इतलाकिहा, लिअन्न, फिर देखें भाई वजह जिक्र कर रहे हैं कि इस कजिए को मुतलका क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कजिए को मुतलकन जिक्र किया जाए यानी बगैर किसी कैद के, तो फिर इससे यही माना समझ में आता है कि जो निस्बत बयान की जा रही है तीन जमानों में से किसी एक जमाने के अंदर है। तो आम कजिए से चूंकि यह समझ में आता है मुतलक हो जब, तो इसमें भी यही चीज है, तो इसका नाम वही रख दिया जो मुतलक कजिए से समझ में आता है। तो ये आदमी तकीदिहा, इसका आतफ किस पर है? عند اطلاقها में जो اطلاقها है इस पर आतफ है। तो कहते हैं وتسميتها بالمطلقة, और इस कजिए को मुतलका के नाम के साथ मौसूम करना जो है वो لأن هذا هو المفهوم من القضية عند اطلاقها, इसलिए क्योंकि यही चीज मफहूम होती है, यही बात समझ में आती है من القضية قضية से عند اطلاقها, जिस वक्त वो कजिया मुतलक हो, وعدم تقييدها और مقيد نہ ہو। देखा यह है अथवे तफसीरी भाई, मैंने आपको बतलाया था कि हर्फ अतफ से पहले जो आए उसको कहते हैं मातूफुन आले, और हर्फ अतफ के बाद जो आए उसको क्या कहते हैं मातूफ, और मातूफ और मातूफुन आले आपस में गैर होते हैं। जानी जैदुन व अमरुन, जैदुन जो पहले आया वो है मातूफुन आले, और वह हर्फ अतफ, और अमरुन क्या है मातूफ, और ये दरमियान में वह जो आया इसने बतला दिया कि जैद और है और अमर और है। मेरे पास जैद और अमर आए, ये और बतला रहा है कि जैद अलग जात है और अमर अलग जात है। तो ये आतफ मुगायरत का तकाजा करता है, आतफ ये बतलाता है कि मातूफुन अले और है और मातूफ और। लेकिन कभी कभार ऐसा किया जाता है कि आतफ के जरिए मातूफुन अले का माना बयान किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको अथवे तफसीरी कहते हैं। ये गैर नहीं होते एक दूसरे से, क्योंकि मातूफुन आले आया तो मुसन्निफ आगे उसका माना बयान करते हैं आतफ के जरिए, कि हो सकता है पढ़ने वाले को इसके माना का पता न चले, तो आतफ के साथ उसका माना बयान कर दिया जाता है। जैसे यहां पर है لأن هذا هو المفهوم من القضية, इसलिए क्योंकि यही बात समझ में आती है कजिया से, عند اطلاقها, जब कजिया क्या हो मुतलक हो, भाई क्या माना मुतलक हो, वह आदमी तकीदिहा माना बयान कर दिया, नहीं जब वो मुकैद ना हो, बे जरूरती अवि दवामी और गैर इजालिका मिनल जिहाती, जरूरत या दवाम या इसके अलावा किसी और जिहत के साथ। तो इतलाक का क्या माना, आदम तकीद, इतलाक का क्या माना है यानी उसमें कोई कैद ना हो, तो इसको मुतलका इसलिए कहते हैं। और आम्मा क्यों कहते हैं वो भी बयान कर रहे हैं, व बिल आम्मती, और इसको आम्मा के साथ मौसूम करते हैं, लिकौनिहा आम्मा मिनल वजूदीयति ला दाइमती व ला जरूरीयति अला मा सयजीउ। आगे यही मुतलका आम्मा आएगा, तवज्जो है, यही मुतलका आम्मा आएगा, लेकिन उसमें कभी ला दाइमा की कैद होगी और कभी ला जरूरिया की कैद होगी, ला जरूरिया, और उस वक्त उसको वजूदिया ला दाइमा कहते हैं या वजूदिया ला जरूरिया कहते हैं। तवज्जो है, इसी मुतलका आम्मा में ला दाइमा की कैद लगाकर फिर इसका नाम बदल देते हैं, क्या नाम है फिर, वजूदिया ला दाइमा, और कभी ला जरूरिया की कैद साथ बढ़ा देते हैं तो फिर क्या कहते हैं, वजूदिया ला जरूरिया। तो चूंकि ये उनसे ज्यादा आम है इसलिए इसको मुतलका आम्मा कहते हैं। ये आम क्यों, आम्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उसके मुकाबले में ज्यादा आम है। तो ये माना है, वबिल आम्मति लिकौनिहा आम्मा मिनल वजूदीयति ला दाइमति वल्ला जरूरीयति, इस वजह से क्योंकि ये ज्यादा आम है वजूदिया ला दाइमा और वजूदिया ला जरूरिया के मुकाबले में, अला मा सयजी बिना बरूस के जो आन करीब आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां एक और कीमती बात याद रखना, इन्होंने क्या कहा, मुतलका आम्मा किसे कहते हैं, जिसमें यह बयान हो कि यह निस्बत बिल फेअल है, क्या है भाई, अगर यह बयान हो कि यह निस्बत जरूरी है तो वह पहली चार किस्में थी, अगर यह बयान हो कि यह निस्बत दाइमी है तो फिर अगली दो किस्में थी, और अगर यह बयान हो कि यह निस्बत बिल फेल है तो इसका क्या नाम है, मुतलका आम्मा। तवज्जो है, कीमती बात करने लगाऊं, अगर यह बयान हो कि यह निस्बत बिल फेल है तो इसको क्या कहते हैं, मुतलका आम्मा, और बिल फेल का क्या तर्जमा किया शारेह ने, कि तीन जमानों में से किसी एक जमाने में है यह निस्बत, यह निस्बत। लेकिन हक यह है कि यह तफसील जो शारह ने की सही नहीं बई। बिलफेल का माना तीन जमानों में से एक जमाने में नहीं, चुनाचे मुहशी ने भी इस पर रद किया है भाई, मुहशी ने भी। बल्कि बिलफेल का माना यह है कि यह वाली निस्बत बिलफेल है, बिलकुवा नहीं है। बिलफेल का क्या माना है कि यह वाली, मैंने आपको बताया था, एक है बिलकुवा, एक है बिलफेल। बिलकुवा का क्या माना होता है, एक चीज में दूसरी चीज की सलाहियत है। मसलन आप कहते हैं कुल्लु इंसानिन कातिबुन, हर इंसान क्या है, कातिब, यानी उसमें अल्लाह ने किताबत की सलाहियत रखी है। तो आप ये जो सलाहियत है इसको बिलकुवा के साथ ताबीर करते हैं, और एक है जो अपने हाथ से बाकायदा लिख रहा है तो कहेंगे ये कातिब बिलफ़ेल है। क्या है, तो बिलफ़ेल का माना है कि फिलहाल, यानी एक चीज को क्या कर रहा हो, फेल के साथ के काम को कर रहा हो भाई। दूसरी मिसाल ले लें, हम कहते हैं हर इंसान में अल्लाह ने ज़हक की सलाहियत रखी है। इंसान जो है वो उमूर गरीबा, अनोखी चीजों का इदराक करता है। इंसान को अल्लाह ने इदराक की कुव्वत दी है, ये इलम हासिल करता है, चीजों का इदराक करता है। तो जब हर तरह की चीजों का इदराक कर रहा है तो अजीब चीजों का भी इदराक करेगा, और अजीब चीज जब वो कोई अजीब चीज देखता है तो उसको ताज्जुब लाहिक होता है, और ताज्जुब की वजह से उसको हंसी आ जाती है। तो ये हंसी हमें क्यों आती है, ताज्जुब की वजह से, यानी एक चीज हमें बड़ी अनोखी लगती है। जैसे आपको कोई लतीफा सुनाता है तो आप हंस पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी बात होती है जो बड़ी अनोखी और अजीब सी आपको लगती है। अगर आम मामूल की बातें हों फिर आपको हंसी नहीं आती। तो लिहाजा इंसान उमूरे गरीबा का, ये यूं कहे इंसान उमूरे अजीबा का इदराक करता है, और फिर उसको ताज्जुब लाहिक होता है, और फिर उसकी वजह से उसको हंसी आ जाती है। तो हर इंसान में अल्लाह ने ज़हक की सलाहियत रखी, तो हम कहेंगे कुल्लु इंसानेन ज़ाहिकुन, क्या माना, अल्लाह ने इंसान में ज़हक की सलाहियत रखी है। और एक है ज़हक बिलफेल करना, यानी एक शख्स बिलफेल हंस रहा हो तो हम कहेंगे कि यह ज़हक बिलफेल है, यह शख्स ज़ाहिक बिलफेल है। तो एक है सलाहियत वो और चीज, और एक है बिलफेल एक चीज को सरंजाम देना वो और चीज, उसको बिलफेल के साथ जिक्र करते हैं। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा बिलकुवा का माना होता है एक चीज में सलाहियत है, और बिलफेल का क्या माना कि वो उसको क्या करे, बाकायदा उसको सरंजाम दे उस चीज को। तो यहां जो बिलफेल इन्होंने जिक्र किया, बिलफेल का क्या तर्जमा किया कि यह निस्बत तीन जमानों में से किसी एक जमाने में हो, नहीं, हक यह है कि यह तशरीह दुरुस्त नहीं। मिरकात में भी यही तशरीह है, उन्होंने भी तीन जमानों में से एक जमाने की कैद लगाई है, और शरह तहजीब वाले ने भी तीन जमानों में से एक जमाने की कैद लगाई है, लेकिन यहां तीन जमाने नहीं मुराद। बल्कि बिलफेल का क्या माना है कि यह निस्बत बिलकुवा नहीं है, सिर्फ सलाहियत नहीं है, बल्कि वाकई में भी है, बल्कि वाकई में भी है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन ज़ाहिकुन, जैदुन ज़ाहिकुन माना क्या है कि जैद के लिए, जैद बिलफेल ज़हक करने वाला है, सिर्फ सलाहियत नहीं है बल्कि उसमें बिलफेल है। बात समझ में आ गई। और इसमें फिर जब बिलफेल है तो बिलफेल में तीन जमानों में से एक जमाने में भी हो सकती है और दाइमन भी हो सकती है। हर आसमान मुतहर्रिक है या नहीं, और दाइमन है, तो मैं कह सकता हूं कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिलफ़ेली, कह सकता हूं या नहीं कह सकता, वो बिलफेल मुतहर्रिक है या सिर्फ उसमें सलाहियत है, बिलफेल है, तो मैं कह सकता हूं कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिलफ़ेली। तो बिलफेल का जो इन्होंने माना किया कि तीन जमानों में से एक जमाना, नहीं नहीं, ये माना नहीं। बिलफेल का माना है यानी ये निस्बत बिलकुवा नहीं है बल्कि बिलफेल है। बात समझ में आ गई, यानी वाकई में भी उस चीज के लिए साबित है, सिर्फ सलाहियत नहीं है। तो और इसमें फिर तीन जमाने भी आ गए और दवाम भी आ गया। देखो हर आसमान दाइमन मुतहर्रिक है, लेकिन मेरा कहना सही है कि कुल्लु फलकिन मुतहर्रिकुन बिलफ़ेली, हर आसमान मुतहर्रिक है बिलफेल, मेरा कहना सही है या गलत है? सही है, वो बिलफेल हरकत कर रहा है। जैद बिलफेल हंस रहा है तो मैं कहूंगा जैद उन जाहिक उन बिलफेल। बात समझ में आ गई? तो इसको अब सुनो वजह, इसको मुतलका आम्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि आम जब कोई निस्बत बयान की जाए तो यही समझा जाता है कि यह निस्बत बिलफेल साबित है। जब मैं कहूं अल इंसान जाहिकुन, इंसान क्या है? जाहिक है, तो इससे क्या समझा जाता है? बिलफेल जाहिक समझा जाता है, बिलकुवा जाहिक। ये लोग इससे ये नहीं समझते कि इंसान में जहक की सलाहियत है, वो तो क्या समझते हैं कि बिलफेल यानी उसके लिए जहक का सबूत है। और बिलफेल मैंने बताया उसमें तीन जमाने भी आ सकते हैं और दाइमन भी आ सकता है। लिहाजा शारह ने जो कहा, फिर देखिए किताब पर, कौलहू औ बिफ़िअलियति हा ऐ तहक्कुक निस्बती बिलफेली, यानी उस निस्बत का तहक्कुक बिलफेल है, बिलकुवा नहीं है। अब तर्जमा समझ में आया? उस निस्बत का तहक्कुक बिलफेल है, बिलकुवा नहीं है। आगे इसे निचली सतर में कहा, बिकौनी निस्बती मुतहक्किकतन बिलफेली ऐफी अहदिल अजमीनत सलासा, यहां तीन जमानों के कैद नहीं लगानी चाहिए थी बल्कि यूं कहना चाहिए था, बिकौनी निस्बती मुतहक्किकतन बिलफेली ऐफिल जुमलती, मजमूए एतबार से निस्बत क्या है? मुतहक्किक है, साबित है। मजमूए एतबार से निस्बत साबित है, इसमें तीन जमाने भी आ गए और इसमें दवाम भी आ गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे आइए भाई, मतन देखिए भाई, मतन औ बिआदमी जरूरत खिलाफिहा फमुमकिनतुन आम्मतुन, बिआदमी जरूरत खिलाफिहा, यह खिलाफिहा की जो हा जमीर है यह निस्बत को राजे है, ऐ बिआदमी जरूरत खिलाफ निस्बती, और इसका अतफ भी उसी पर करें जहां पीछे आया था, फइन कान अल हुक्म फीहा बिजरूरत निस्बती, बिजरूरत निस्बत की जगह बिआदम जरूरत खिलाफ निस्बत को रख दें। अब तर्जमा सुनो, कहते हैं फइन कान अल हुक्म फीहा, अगर कजिए के अंदर यह हुक्म हो क्या, बिआदम जरूरत खिलाफीहा, कि इस निस्बत का खिलाफ जरूरी नहीं, तर्जमा में आखिर से कर रहा हूं, और अगर कजिए में यह हुक्म हो बिआदमी जरूरत खिलाफिहा कि निस्बत का खिलाफ जरूरी नहीं है, फमुमकिनतुन आम्मतुन, तो उसको क्या कहते हैं? मुमकिना आम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमकिना आम्मा कहते हैं। भाई देखिए, मुमकिना आम्मा में इम्कान जिक्र होगा, क्या जिक्र होगा? इम्कान जिक्र होगा, जैद उन कायम उन बिल इम्कान आम्मी, जैद का खड़ा होना मुमकिन है, तवज्जो है, जैद उन कायमुन बिल इम्कान आमिद, क्या तर्जमा? जैद का खड़ा होना मुमकिन है, जैद का खड़ा होना मुमकिन है। तो बाज उलमा ने तो इस पर एतराज किया है, कहते हैं मुमकिन आमा उसमें इम्कान जिक्र होता है, जैद उन कायमुन बिल इम्कान आमिद, जैद का खड़ा होना मुमकिन है। क्या मैंने इसमें बताया कि जैद खड़ा है? नहीं, मैंने सिर्फ क्या बताया, मैंने ये नहीं कहा जैद खड़ा है, मैंने क्या कहा? जैद का खड़ा होना मुमकिन है। तो बाद उलमा फरमाते हैं ये मुमकिना आम्मा ये तो सिरे से कजिया ही नहीं है, कजिया तो वो होता है जिसमें या तो वुकू होता है, निस्बत का वुकू होता है या ला वुकू, यानी कियाम का जैद के लिए वुकू होगा या ला वुकू होगा, कि जैद खड़ा है या खड़ा नहीं, यहां तो सिर्फ इम्कान जिक्र किया जा रहा है, जैद के लिए खड़ा होना मुमकिन है और कजिए में तो क्या होता है? वुकू और ला वुकू होता है, तवज्जो है, कि यानी जैद के लिए खड़ा होना वाकई है या जैद के लिए खड़ा होना वाकया नहीं है, यह बयान किया जाता है, और मुमकिन आमा में तो सिर्फ एक इम्कान जिक्र किया जा रहा है, जैद के लिए खड़ा होना मुमकिन है, इम्कान जिक्र किया जा रहा है। लिहाजा बाजों ने तो इसको कजिया मानने से ही इनकार कर दिया कि कजिया में तो वकू या ला वकू होता है, इसमें तो वकू या ला वकू नहीं, बस सिर्फ एक इम्कान जिक्र किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल आम उलमा इसको कजिया ही करार देते हैं और इसमें भी एक शय का सबूत होगा दूसरी शय के लिए या एक शय की दूसरी शय से नफी होगी और कजिए में भी एक शय का सबूत होता है या एक शय की नफी होती है, अलबत्ता इसमें इमकान की कैद भी साथ होगी। जैदुन कायमुन बिल इमकान अल आमी, देखा जैदुन कायम जैद के लिए क्या साबित है, कियाम साबित है बिल इमकानी, लेकिन किस तरीके पर, इमकान के तरीके पर। भाई तो आम उलमा इसको कजिया कहते हैं, अगरचे बाजों ने इसके कजिया होने से ही इनकार कर दिया कि इसमें तो इमकान जिक्र है, इसमें तो वकूअ या लावकूअ जिक्र नहीं है। अच्छा, यह मुमकिना आम्मा आया भाई, भाई इमकान को अच्छी तरह समझ लें। किताब के शुरू में जहां कुल्ली और जुजी का बयान आया था मतन में, कुल्ली और जुजी मिल गया
जी,
कुल्ली और जुजी का बयान आया था भाई, फसलुन ये मतन में था, फसलुन अल मफहूम इनिमतना फर्ज सिदकी अला कसीरीन फजुजईयुन व इल्ला फकुल्लीयुन, मिल गया
जी।
हां यहां आया था कि मफहूम जो है अगर अकल उसके कसीरीन पर सादिक आने को जायज न समझे फजुजईयुन तो वो जुजी है, व इल्ला और अगर ऐसा ना हो फकुल्लीयुन तो वो कुल्ली है, इम्तनात अफरादहु अव अमकनत, फिर उस कुल्ली के अफराद या तो मुमतनिया होंगे अव अमकनत या मुमकिन होंगे। यहां मुमकिन की बहस आई थी, मैंने आपको इमकान आम और इमकान खास की तफसील बतलाई थी, चलिए आज फिर दोबारा कर लें भाई, दोबारा कर लें। याद रखो इमकान जो है दो किस्म पर होता है, एक है इमकान आम और एक है इमकान खास। इमकान आम कहते हैं जानिब मुखालिफ से जरूरत का सलब, जानिब मुखालिफ से जरूरत का सलब, यानी यूं कहें जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। और एक है इमकान खास, वो कहते हैं जानिबैन से जरूरत की नफी। इमकान खास किसे कहते हैं, जानिबैन से, यानी दोनों जानिब से जरूरत की नफी, जबकि इमकान आम में जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है। भाई दो जानिबें हैं ना, एक है एक चीज का होना और एक है न होना, तवज्जो है, एक है होना और एक न होना। तो इसमें इमकान आम में अगर होना जिक्र है तो इसकी जानिब मुखालिफ क्या, न होना, न होना। तो अगर इसमें होना जिक्र है तो मतलब यह है कि न होना जरूरी नहीं, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी कर दो। मसलन मैं कहता हूं जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, तो यानी जैद के लिए कयाम का सबूत है, और जानिब मुखालिफ क्या, जैद से कयाम की नफी। मसलन मैं कहता हूं जैदुन कायमुन बिल इमकान अल आमी, जैद का कयाम मुमकिन है, इजाब है या सल्ब है, जैदुन कायमुन बिल इमकान अल आमी, इजाब है ना, नफी है, कोई नफी वाला हर्फ है नहीं, तो यह इजाब है। तो जैदुन कायमुन बिल इमकान अल आमी, जैद का कियाम मुमकिन है, इसकी जानिब मुखालिफ लाओ, जैद से कियाम की नफी, जैद से कियाम की नफी, बस। तो जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं, यानी जैद से कियाम की नफी जरूरी नहीं, तवज्जो है। मैंने क्या कहा, जैदुन कायमुन बिल इमकान अल आमी, क्या तर्जमा, जैद का कियाम मुमकिन है, जानिब मुखालिफ क्या होगी, उसमें सलब होगा, उसमें नफी होगी, यानी जैद से कयाम की नफी। इमकान आम की तारीफ मैंने क्या बतलाई, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। अब जरूरत की नफी कर दो, जैदुन कायमुन बिल इमकान अल आमी, जैद के लिए कयाम मुमकिन है, तो जानिब मुखालिफ क्या है, जैद से कयाम की नफी जरूरी नहीं। अपने सामने जरा लिखो, तारीफ लिखो, फिर आपको बात समझ में आएगी। लिखो इमकान आम, इमकान दो किस्म पर है, एक इमकान आम और एक इमकान खास। लिखिए भाई जल्दी जल्दी, इमकान दो किस्म पर है, एक इमकान आम और एक इमकान खास। इमकान आम का माना है जानिब मुखालिफ से जरूरत का सलब, इम्कान आम का माना है जानिब मुखालिफ से जरूरत का सलब, यानी जरूरत की नफी, यानी जरूरत की नफी। और इम्कान खास का माना है दोनों जानिब से जरूरत का सलब, यूं कहें जानिबैन से, दोनों जानिब से लिख लें या जानिबैन लिख लें, एक ही बात है। जानिबैन यानी दोनों जानिब से जरूरत का सलब यानी जरूरत की नफी, दोनों जानिब से जरूरत की नफी। अब देखो, इधर देखिए, इम्कान आम किसे कहते हैं, जरा तारीफ पे नजर रखो। जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, मैंने कहा जैदुन कायमुन बिल इम्कान आमी, मैंने क्या जिक्र किया, ईजाब या सलब, ईजाब, जैद के लिए खड़ा होना मुमकिन है, इसकी जानिब मुखालिफ ले आओ जैद से कयाम की नफी, जैद से इसमें है जैद के लिए कयाम का सबूत, तो जानिब मुखालिफ क्या है, जैद से कयाम की नफी, तो ये जानिब मुखालिफ है। और जानिब मुखालिफ की जरूरत की नफी, जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं, जानिब मुखालिफ क्या, कयाम की नफी, यानी कयाम की नफी जरूरी नहीं, जैद से कयाम की नफी जरूरी नहीं। बात समझ में आ गई, एक है ईजाब एक है सलब यानी नफी, ईजाब की जानिब मुखालिफ क्या, सलब, और सलब की जानिब मुखालिफ क्या, ईजाब। तो ये जो इम्कान आम है, अगर कजिए के अंदर ईजाब जिक्र हो तो कहेंगे इसकी जानिब मुखालिफ यानी सलब जरूरी नहीं, और अगर कजिए के अंदर सलब जिक्र हो तो कहेंगे इसकी जानिब मुखालिफ यानी ईजाब जरूरी नहीं। मैंने क्या कहा, जैदुन कायमुन बिल इम्कान आमी, जैद का कयाम मुमकिन है, जानिब मुखालिफ क्या, जैद से कयाम की नफी, इसमें है जैद के लिए कयाम का सबूत, तो जानिब मुखालिफ क्या होगी, जैद से कयाम की नफी जरूरी नहीं, जैद से कयाम की नफी जरूर। बात समझ में आ गई, और मिसाल ले लो, कुल्लो इंसान इन हैवान उन बिल इम्कान आमी, हर इंसान का हैवान होना मुमकिन है, हर इंसान का हैवान होना मुमकिन है, दुरुस्त है गलत है, दुरुस्त है, मुमकिन ही क्या, बिलफेल भी इंसान क्या है, हैवान है, तो इंसान का हैवान होना मुमकिन है, तो कुल्लो इंसान इन हैवान उन बिल इम्कान आमी, हर इंसान का हैवान होना मुमकिन है, जानिब मुखालिफ लाओ, इंसान से हैवान की नफी, इधर क्या था, इंसान के लिए हैवान का इस बात, ले आओ जानिब मुखालिफ, इंसान से हैवान की नफी जरूरी नहीं, इंसान से हैवान की नफी जरूरी नहीं। आप आम कलाम में ले आओ, मैं कहता हूं हो सकता है जैद आ जाए, मुमकिन है, मुमकिन है जैद आ जाए, मुमकिन के बजाय हो सकता है कह लो या मुमकिन कह लो, एक ही बात है, मैं कहता हूं हो सकता है जैद आ जाए, क्या माना, आना मुमकिन है, जानिब मुखालिफ लाओ, ना आना, मालूम न आना जरूरी नहीं, हो सकता है आ जाए, एक ही बात है या नहीं, जब ईजाब जिक्र हो तो जानिब मुखालिफ क्या, सल्ब, और सल्ब हो जिक्र हो तो जानिब मुखालिफ क्या, ईजाब। मैंने कहा हो सकता है जैद आ जाए, क्या माना, सल्ब, सल्ब लाओ, जानिब मुखालिफ लाओ, न आना, उससे जरूरत की नफी करो, न आना जरूर, जैद का न आना जरूरी नहीं है, जब मैं कह रहा हूं हो सकता है जैद आ जाए, मालूम हुआ न आना जरूरी, अगर जैद का न आना जरूरी होता तो वो आ सकता था, तो मालूम हुआ उसका न आना जरूरी नहीं। बड़ा वजनी पत्थर है, बड़ा वजनी पत्थर है, मैं कहता हूं हो सकता है जैद इसको उठा ले, हो सकता है जैद इसको, क्या माना, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी करो, न उठाना जरूरी नहीं, जैद का इस पत्थर को न उठाना जरूरी नहीं। अगर बहुत बड़ा पत्थर है कमरे जितना, अब मैं कहूंगा कि हो सकता है जैद इसको उठा ले, नहीं, अब तो जरूरी है कि जैद नहीं उठा सकता इसको, तो जहां मुमकिन होता है वहां कहा जाता है, तो इम्कान आम में क्या होता है, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, तो जो ईजाब जिक्र हो तो सल्ब ले आओ और जरूरत की नफी कर दो, और अगर सल्ब है तो ईजाब ले आओ और जरूरत की नफी कर दो। दूसरी तीसरी मिसाल ले लो, हो सकता है जैद ना आए हो सकता है यानी मुमकिन है, देखो मैं इम्कान जिक्र कर रहा हूं, और कौन सा इम्कान है, इम्कान आम, और इम्कान आम में क्या होता है, जानबी मुखालिफ से जरूरत की नफी। अब बनाओ बनाओ, हो सकता है जैद न आए, जानबी मुखालिफ क्या हो सकता है, जैद न आए, जानबी मुखालिफ बनाओ, जैद का आना, इधर न आना है तो मुखालिफ क्या आना, मालूम है जैद का आना जरूरी नहीं। अगर जैद का आना जरूरी होता तो मैं कह सकता था हो सकता है जैद ना आए, फिर तो वो जरूर आता। हो सकता है जैद न आए, जानिब मुखालिफ क्या है, मालूम है जैद का आना जरूरी नहीं। तरीका समझ में आ रहा है क्या, इम्कान आम में जानिब मुखालिफ से जरूरत का सलब होता है, तो इम्कान आम जो है ना, इम्कान आम उसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत का सलब होता है, यानी जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं। तो जो अगर ईजाब जिक्र हो तो वहां आप सलब ले आए, और अगर सलब जिक्र हो तो वहां ईजाब ले आए। मसलन और मिसाल ले लें, मसलन मैं आपसे कहता हूं हर आग का गर्म होना मुमकिन है, हो सकता है हर आग क्या हो, गर्म हो, ईजाब है या सलब है, ईजाब, जानिब मुखालिफ ले आओ, गर्म ना होना, आग का गर्म ना होना उससे जरूरत की नफी कर दो, जरूरी, हर आग का गर्म न होना जरूरी नहीं है। अच्छा अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई, गर्म न होना के बजाय फिर ठंडा होना ले आओ, हर आग का ठंडा होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई, तो इम्कान आम किसे कहते हैं, जानिब मुखालिफ से जरूरत का सल्ब, जानिब मुखालिफ से, और एक है इम्कान खास, उसमें जानिबैन से जरूरत का सल्ब होता है, यानी ईजाब भी जरूरी नहीं और सल्ब भी जरूरी नहीं। मसलन मैं कहता हूं जैदुन कायमुन बिल इम्कान खास, इसको इम्कान खास कहते हैं, जैदुन कायमुन बिल इम्कान खास, क्या माना, जानिबैन से जरूरत का सल्ब करो, जैद के लिए कयाम भी जरूरी नहीं और जैद के लिए कयाम का न होना भी जरूरी नहीं है, दोनों जानिबें ले आओ। इम्कान आम किसे कहते हैं, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, और इम्कान खास किसे कहते हैं, दोनों जानिब से जरूरत की नफी, ईजाब से भी नफी और सल्ब से भी नफी, यानी ईजाब भी जरूरी नहीं और सल्ब भी जरूरी नहीं, और इसको इम्कान खास कहते हैं और दूसरे को इम्कान आम कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एक जानिब से जरूरत की नफी होती है और इसमें दोनों जानिब से जरूरत की नफी होती है, तो इसमें दो कैदें हो गई, गोया कितनी कैदें, होना भी जरूरी नहीं और ना होना भी, जबकि इम्कान आम में या होना जरूरी नहीं या ना होना जरूरी नहीं एक चीज आएगी, और इम्कान खास में दो चीजें आएंगी, और कैदें जितनी बढ़ती जाए चीज खास होती चली जाती है, चीज खास होती चली जाती है। मसलन मसलन मैं आपसे कहता हूं गुलाम, दुनिया में फर्ज करो एक करोड़ गुलाम है, तो जब मैंने गुलाम बोला, गुलाम कहा, तो कितने एहतमाल आ गए, एक करोड़, उनमें से हर एक पर यह लफ्ज बोला जा रहा है, तो गुलाम कितने, एक करोड़, तो यह गुलाम का लफ्ज भी कितने पर बोला जा सकता है, एक करोड़ पर। अच्छा इसमें मैं एक कैद बढ़ा देता हूं, गुलाम उन सालेहुन, नेक गुलाम, अब फर्ज करो उनमें से नेक सिर्फ एक लाख हैं, तो अब देखो कैद बढ़ गई तो अफराद कम हो गए, अफराद क्या हो गए, कम हो गए। फिर इसमें मैं एक शायर की कैद भी बढ़ा देता हूं, गुलाम उन सालेहुन शायरुन, ऐसा गुलाम जो नेक भी हो और शायर भी हो, अब फर्ज करो शायर तो सिर्फ 5000 हैं, तो अफराद क्या हो गए, और कम हो गए। जितनी कैदें बढ़ती जाएं चीज के अंदर तख्सीस बढ़ती जाती है, यहां पर भी इम्कान आम में सिर्फ एक जानिब से जरूरत की नफी है, या होना जरूरी नहीं या न होना जरूरी नहीं, जबकि इम्कान खास में दो कैदे हैं, होना भी जरूरी नहीं और न होना भी, तो जब दो कैदे आ गई तो ये खास हुआ किसके मुकाबले में, इम्कान आम के मुकाबले में। फिर याद रखना ये जो इम्कान आम जो है ये दो किस्म पर है, एक इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल वजूद और एक इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल आदम। ये एक नक्शा अपने सामने बनाओ, फौरन आपको बात समझ में आ जाएगी। दरमियान में एक नुक्ता लगाएं सफे के दरमियान में, और इस नुक्ते से तीन खत खींचें, पंखे की तरह की शक्ल बना लें, छोटे एक एक डेढ़ डेढ़ इंच वाले खत खींच लें, पंखे की सूरत बन गई जी। एक खत के किनारे पर लिख लें वाजिब वाजिब, दूसरे किनारे पर लिख लें मुमतनिअ मुमतनिअ, तीसरे के नीचे लिख लें मुमकिन। लिख लिया? देखो चीजें तीन तरह की हैं, कुछ चीजों का होना वाजिब है जरूरी है जैसे अल्लाह ताला की जात, और कुछ चीजें मुमतने हैं वो हो ही नहीं सकती जैसे अल्लाह का शरीक, अल्लाह का शरीक। तो अल्लाह का शरीक क्या है? मुमतने है, और अल्लाह की जात क्या है? वाजिब है, और बाकी चीजें जो हैं वो मुमकिन है, उनका होना ना होना बराबर है, हो तो भी ठीक ना हो तो भी ठीक। बात समझ में आ गई? तो चीजें कितनी किस्म की? तीन, वाजिब मुमतने और मुमकिन। नक्शा बना लिया जी, तो वाजिब के साथ लिख लें वाजिब, वाजिब है मालूम हुआ ये यजीबू है, फेल क्या बोलेंगे इसके लिए? यजीबू। जब ये यजीबू है तो बाकी दोनों चीजें क्या हुई? ला यजीबू। तो मुमतने के साथ ला यजीबू लिख लें, मुमतने के साथ ला यजीबू लिख लें, और मुमकिन के साथ भी ला यजीबू लिख लें। वाजिब तो यजीबू है, वाजिब तो क्या है? यजीबू यानी वाजिब है, फेल बोल रहा हूं यजीबू। तो बाकी दोनों मुमतने भी क्या हुआ? ला यजीबू, और मुमकिन भी क्या हुआ? ला यजीबू। अच्छा अब मुमतने पर आ जाएं, मुमतने वो इम्तना है या ला यमतनी? हां मुमतने ला यजीबू को छोड़ दें, इम्तना दूसरा फेल ले आए। मुमतने किसी को क्यों कहते हैं? इम्तना वजूदुहु, क्योंकि उसका वजूद क्या होता है? हाँ या यमतनिउ कह लें, यमतनिउ। मुमतने जो है वो यमतनिउ है, यानी उसका वजूद मुमतने है। तो मुमतने क्या है? यमतनिउ। तो बाकी दोनों ला यमतनिउ है, लिहाजा वाजिब के साथ लिखो ला यमतनिउ, वाजिब के साथ लिखो ला यमतनिउ, और मुमकिन के साथ भी लिखो ला यमतनिउ, मुमकिन के साथ भी लिखो ला यमतनिउ। बात समझ में आ रही है? तो एक है वाजिब, उसको ताबीर किससे करेंगे? यजीबू, यानी उसका होना जरूरी। बाकी दोनों क्या हैं? ला यजीबू। और इसी तरह इनमें से एक है मुमतने, उसको किससे ताबीर करेंगे? यमतनिउ से। तो बाकी दोनों क्या हुए? ला यमतनिउ। तो ये जो नीचे आया सबसे नीचे, इसके साथ दो कैदें आ गई, ला यजीबू और ला यमतनिउ, और ऊपर वाजिब क्या है उसको किससे ताबीर करेंगे? यजीबू से या ला यमतनिउ से ताबीर करेंगे, और जो मुमतने है उसको किससे ताबीर करेंगे? यमतनिउ से ताबीर करेंगे या ला यजीबू से ताबीर करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब लिखो भाई आगे दो तीन सतरें और लिख लें। इम्कान आम दो किस्म पर है, इम्कान आम दो किस्म पर है। कीमती बहस है, तुलबा परेशान होते हैं कि इम्कान आम क्या है, इम्कान खास क्या है। अच्छी तरह समझ लें, बिल्कुल आसान है भाई। इम्कान आम दो किस्म पर है, दो किस्म पर है। एक मुकैद बिजानिबिल वजूद, एक मुकैद बिजानिबिल वजूद, और इसे ला यमतनिउ से ताबीर करते हैं, और इसे ला यमतनिउ से ताबीर करते हैं, और यह कज़िया मुजिबा में आता है, और ये कज़िया मुजिबा में आता है। अलग सतर। और दूसरा इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल अदम, अलग सतर में लिखें। और दूसरा इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल अदम, मुकैद बिजानिबिल अदम, और इसे ला यजीबू से ताबीर करते हैं, और इसे ला यजीबू से ताबीर करते हैं, और यह कज़िया सालिबा में होता है, और यह कज़िया सालिबा में होता है। नीचे अलग सतह लिखें, जबकि इम्कान खास, जबकि इम्कान खास उसको ला यजीबू ला यमतनिउ से ताबीर करते हैं, उसको ला यजिबु ला यमतनिउ से ताबीर करते हैं। लिख लिया, इधर देखें भाई, याद रखो ये इम्कान आम दो किस्म पर है, तवज्जो है, एक मुकैद भी जानिबिल वजूद, एक मुकैद भी जानिबिल आदम। मुकैद भी जानिबिल वजूद आसान सी बात है, जिसमें एक चीज के होने को जिक्र किया जाए कि एक चीज का होना मुमकिन है, तवज्जो है, एक चीज का होना मुमकिन है, और होना ये मुजिबा में होता है या सालेबा में? मुजिबा में, इसलिए मैंने कहा कि किस में आएगा कजिया, मुजिबा में, और ये मुकैद होता है बिजानिबिल वजूद, यानी इस मुकैद होता है किसके साथ? वजूद यानी होने के साथ। किसके साथ? होने, एक चीज का होना जिक्र होता है। मसलन मैंने कहा हो सकता है जैद आ जाए, हो सकता है जैद, मैंने जैद के आने को जिक्र किया या ना आने को? आने को। तो देखो ये कजिया मुजिबा है और ये मुकैद है बिजानिबिल वजूद, यानी आने का जिक्र हो रहा है कि आना मुमकिन है, आने का वजूद हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आना, और इसको क्या कहेंगे? इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल वजूद, और इसको ताबीर किससे करते हैं? ला यमतनिउ। मैंने कहा हो सकता है जैद आ जाए, मालूम हुआ जैद का आना ला यमतनिउ नामुमकिन नहीं है। जब मैंने कहा हो सकता है, मालूम हुआ नामुमकिन नहीं, तो ला यमतनिउ से ताबीर करते हैं। बात समझ में आ रही? और कजिया सालिबा में अगर इम्कान आए तो वो इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल अदम होता है। मसलन मैं कहता हूं हो सकता है जैद न आए, हो सकता है जैद न आए, तो देखो मैंने वजूद का जिक्र किया या अदम का? आदम का, न आने को जिक्र किया, तो ये मुकैद है बिजानिबिल अदम, और ये कजिया सालिबा में होता है, और ये कजिया भी कौन सा है? सालिबा है, और इसको ताबीर करते हैं ला यजिबू से। मैंने कहा हो सकता है जैद न आए, यानी जैद का आना वाजिब नहीं है, ला यजिबु, जैद का आना वाजिब ला यजिबु, उसका आना वाजिब नहीं है। बात समझ में आ गई? और इम्कान खास, ना उसका होना जरूरी और ना ना होना जरूरी, उसको ला यजिबु ला यमतनिउ से ताबीर करते हैं। तो ये जो आपने नक्शा बनाया, इसमें जो सबसे नीचे मुमकिन है वो ला यजिबु ला यमतनिउ है, यह है मुमकिन खास। भाई ये क्या है? मुमकिन खास। और याद रखो, इधर देखिए भाई, मैंने क्या बताया? इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल वजूद, उसको किससे ताबीर करते हैं? ला यमतनिउ से। तवज्जो है, इस नक्शे के अंदर ला यमतनिउ कितनी जगह है? दो जगह। कौन कौन सा? वाजिब और मुमकिन खास। मालूम हुआ जब इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल वजूद हो तो उसमें वाजिब भी दाखिल हो जाता है और मुमकिन खास भी दाखिल हो। इम्कान आम आम है ना, जब वो आम है तो खास उसके अंदर आएगा या नहीं? जैसे हैवान आम है और इंसान क्या है? खास। तो हैवान जिक्र करो तो इंसान उसमें आ गया या नहीं? तो जब इम्कान आम होगा तो इम्कान खास उसके अंदर आ जाएगा। तो यहां पर भी आप देख लें, इम्कान आम का एक नाम क्या, एक किस्म क्या? मुकैद बिजानिबिल वजूद, उसको किससे ताबीर करते हैं? ला यमतनिउ। और ला यमतनिउ में कितनी चीजें हैं नक्शे में? ला यमतनिउ में कितनी चीजें हैं? दो चीजें। कौन कौन सी? ला यमतनिउ किन के साथ लिखा हुआ है जरा देखें, वाजिब और मुमकिन खास। वाजिब और, तो ये ला यमतनिउ जब कहा जाए तो इसमें वाजिब भी दाखिल और मुमकिन खास भी दाखिल, इम्कान आम में दाखिल हो गया मुमकिन खास। और दूसरा क्या है? इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल आदम, उसको किससे ताबीर करते हैं? ला यजिबू से। और ला यजिबू कितनी जगह है? दो जगह है। तो वो दोनों इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल आदम में दाखिल हैं। कौन कौन से दो हैं? एक मुमतनिया और एक मुमकिन खास। तो इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल आदम हो तो मुमतनिया भी उसमें दाखिल और मुमकिन खास भी उसमें दाखिल। और इम्कान आम मुकैद बिजानिबिल वजूद हो तो उसमें वाजिब भी दाखिल और मुमकिन खास भी दाखिल है। बात समझ में आ गई? चलिए बस करें, बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। भाई हासिल कलाम ये कि आज आपने कजिया दायमा मुतलका और मुर्फिया आम्मा के बारे में पढ़ा, इन दोनों में दवाम की कैद होती है। अलबत्ता ये दवाम दो किस्म पर है, कभी ये दवाम जात के एतबार से होता है और कभी दवाम वसफ के एतबार से होता है। अगर दवाम जात के एतबार से हो तो उसको दायमा मुतलका कहते हैं, और अगर दवाम वसफ के एतबार से हो तो उसको उर्फिया आम्मा कहते हैं, उर्फिया आम्मा। और उसके बाद आपने मुतलका आमा के बारे में पढ़ा कि मुतलका आमा जो है उसमें बिलफेल की जिहत होती है, और बिलफेल का माना इन्होंने क्या किया कि तीन जमानों में से किसी एक जमाने के अंदर, लेकिन मैंने बताया हक यह है कि बिलफेल का माना तीन जमानों में से एक नहीं है, बल्कि बिलफेल का माना यह है कि वो चीज बिलकुवा ना हो, बिलकुआ ना हो, बिलफेल हो, फिर चाहे वो तीन जमानों में हो या दाइमन हो, तो दाइमन भी इसके अंदर दाखिल हो गया बिलफेल के अंदर। बात समझ में आ गई। और उसके बाद मैंने आपको इमकान की तफसील बतलाई कि इमकान दो किस्म पर है, एक इमकान आम और एक इमकान खास है। इमकान आम जो है उसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है, और इमकान खास में दोनों जानिब से जरूरत की नफी होती है, यानी होना भी जरूरी नहीं और न होना भी जरूरी नहीं है। तफसील समझ में आ गई। और इमकान आम दो किस्म पर है, एक इमकान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद, और इसको लायम तनियों से ताबीर करते हैं, और इसके अंदर वाजिब भी दाखिल है और मुमकिन खास भी, और ये कजिया मुजिबा में होता है। और इमकान आम की दूसरी किस्म जो है वो इमकान आम मुकैद भी जानिबिल आदम है, और उसको लायजिबू से ताबीर करते हैं, और उसके अंदर मुमतनिया भी दाखिल और मुमकिन खास भी दाखिल, और वह कजिया सालिबा में होता है। जब इमकान कजिया मुजिबा में आए इमकान आम, तो वो इमकान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद है, और अगर कजिया सालिबा में इमकान आम आए तो वो इमकान आम मुकैद भी जानिबिल आदम है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।